नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। भारत की सुबह ईरान में हिमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या की खबर से हुई, जो 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद से चल रहे इसराइल हमास युद्ध में एक बड़ी भूमिका में था। हानिया की हत्या के बाद बुधवार शाम तक नई दिल्ली ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी ईरान के नव निर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए तेहरान में थे। हानिया भी इस समारोह में शामिल होने के लिए तेहरान में थे। ऐसे में यहाँ इस बात पर फोकस करना ज़रूरी है कि हमास शीफ की हत्या के बाद दुनिया और भारत के लिए इसके क्या मायने या मतलब हैं। सबसे पहले ये 7 अक्टूबर के हमलों के बाद हमास के लिए सबसे बड़ा झटका है, जिसमें फिलिस्तीनी संगठन से कम 1200 इसराइली नागरिकों और सैन्यकर्मियों को मार डाला था और लगभग 250 लोगों को बंधक बना लिया था। तब से इसराइली सेना गाजा पर हवाई हमले कर रही है और हमास नेताओं के पीछे ज़मीनी अभियान चला रही है, जिसमें 40,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। इसीलिए इसराइल के दृष्टिकोण से ये हमास को बेअसर करने के उनके मिशन के लिए एक बड़ी जीत है, जो ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन शुरू करने के पीछे घोषित उद्देश्य था। दूसरा, हमास इसे एक बड़ी उकसावे वाली कार्रवाई मानता है, क्योंकि हानिया कतर में स्थित इसके राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख थे। वो हमास का सार्वजनिक चेहरा थे और बंधक लोगों और युद्ध विराम की शर्तों पर बातचीत कर रहे थे, जबकि याहा सिनवार इसका सैन्य नेता है, जो 7 अक्टूबर के हमलों के लिए जिम्मेदार है। एक बयान में हमास ने हानिया की मौत पर शोक व्यक्त किया, जिसके बारे में कहा गया कि वो नए ईरानी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के बाद तेहरान में अपने निवास पर एक विश्वासघाती ज़ायोनी हमले में मारा गया। इससे हमास और उसके संरक्षक ईरान का नाराज होना तय है। हमास के अधिकारी समी अबू जुहरी ने रॉयटर्स को बताया कि ईरान में हानिया की हत्या एक गंभीर घटना है। तीसरा, हानिया की हत्या का स्थान एक और महत्वपूर्ण तथ्य है। ये तथ्य कि लक्षित हमला तेहरान में हुआ था, एक बड़े कदम के रूप में देखा जाएगा। हानिया ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला खामेनेई से भी मुलाकात की थी। कतर में रह रहे हमास नेता को वहां छूट दी गई थी, लेकिन ईरान में उसे मारकर ऐसा लगता है कि इसराइल ने यह संकेत देने की कोशिश की है कि समूह के नेता ईरानी सुरक्षा में सुरक्षित नहीं हैं। इस साल अप्रैल में ईरान द्वारा इसराइल पर हमले किए जाने के बाद इसराइल ने ईरान पर पहला सीधा हमला किया था। उसकी मिसाइलों को इसराइल और क्षेत्र में उसके सहयोगियों ने रोक दिया था। इसके बाद तापमान कुछ हद तक ठंडा हो गया, लेकिन इस हत्या से हमलों के एक और दौर को बढ़ावा मिलने की संभावना है। चौथा, ईरान और हमास के भीतर अब हानिया की मौत का बदला लेने की मांग उठेगी और इससे ईरान नव निर्वाचित राष्ट्रपति पेजेशकियान पर दबाव बढ़ना निश्चित है, जिन्हें एक उदारवादी माना जाता है और वो स्वयं को प्रतिक्रिया देने में कठिनाई में पा सकते हैं। पेजेशकियान के अपने चुनाव अभियान का उद्देश्य आर्थिक कारणों से पश्चिम के साथ वार्ता शुरू करना था, क्योंकि ईरान पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है और वो शुरुआत में यूरोप के साथ वार्ता प्रक्रिया को पुनः शुरू करने की आशा कर रहे होंगे। हानिया की हत्या के बाद पेजेशकियान पर IRGC और ईरानी प्रतिष्ठान के कट्टरपंथियों की ओर से उसी तरह जवाब देने का दबाव होगा। पेजेशकियान के पहले कुछ दिन और सप्ताह तक राजनीतिज्ञ के रूप में उनके कौशल की परीक्षा होगी, जिसमें उन्हें संकट का जवाब देने के लिए सर्वोच्च नेता के साथ बातचीत करनी होगी। पांचवा, ये हत्या इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को जीवनदान देती है। वो अपने नेतृत्व पर सवालों का सामना कर रहे हैं और उनका राजनीतिक अस्तित्व दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि उन पर अंततः हमास के साथ बंधक समझौते को अंजाम देने का दबाव है, जिसकी मध्यस्थता अमेरिका, मिस्र और कतर सहित अन्य देश कर रहे हैं। इस हत्या से फिलहाल सभी प्रयासों पर पानी फिर सकता है और उम्मीद है कि इससे गाजा में युद्ध कुछ और समय तक जारी रहेगा। इसका मतलब ये होगा कि नेतन्याहू युद्ध खत्म होने तक पद पर बने रह सकते हैं। छठा, अमेरिकी चुनाव निर्णायक चरण में है, जिसमें उपराष्ट्रपति कमला हैरिस अगले कुछ सप्ताहों में डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में अपना नाम घोषित करके तथा उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चयन करके डेमोक्रेटिक क्षेत्र को आकार देने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने संकेत दिया है कि वो इसराइल की प्रतिक्रिया और गाजा में युद्ध के मुद्दे पर नेतन्याहू के प्रति अधिक सख्त रहेंगी, क्योंकि उनका ध्यान युवा डेमोक्रेटिक मतदाताओं पर केंद्रित है और इससे जटिलता बढ़ गई है। हैरिस, जिन्हें राष्ट्रपति जो बाइडेन की तुलना में गाजा में युद्ध पर अधिक मुखर माना जाता है, उनको अब इस बारे में सोचना होगा कि क्षेत्र में तनाव बढ़ने की स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। सातवां, व्यापक क्षेत्र पर एक विस्फोटक बॉक्स है, क्योंकि अगर ईरान और हमास द्वारा कोई वृद्धि की जाती है तो इसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा। कतर, तुर्की, यमन के हौथियों ने पहले ही हत्या की निंदा की है और सऊदी अरब, यूएई जैसे शीर्ष क्षेत्रीय नेता घटनाओं पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं। गाजा में 9 महीने से अधिक समय से चल रहे युद्ध के बाद ये एक निर्णायक क्षण है। अप्रैल में हुए घटनाक्रम के बाद जब तनाव बढ़ने का खतरा था, जब क्षेत्र एक व्यापक संघर्ष में उलझ सकता है, आठवां भारत अभी भी घटनाक्रम पर विचार कर रहा है क्योंकि साउथ ब्लॉक प्रतिक्रिया की संवेदनशीलता के प्रति सजग है। हालांकि हमास नेताओं के बारे में उसकी कोई सकारात्मक भावना नहीं है, लेकिन वो इसे तैयार करने में सावधानी बरतेगा क्योंकि इसमें विदेशी धरती पर लक्षित हत्या शामिल है। भारत की तत्कालिक चिंता इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता होगी, जहां लगभग 9 मिलियन भारतीय रहते और काम करते हैं। इसके अलावा ये क्षेत्र भारत को लगभग 2/3 कच्चे तेल की आपूर्ति करता है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।